मुख्य समाचारों में अस्थायी ईंधन उत्पाद शुल्क कटौती की समाप्ति पर एक उग्र राजनीतिक नीति का आदान प्रदान। फेडरल सरकार द्वारा पुष्टि कि नवंबर में ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमताओं में एक अंतरिम रिपोर्ट और अस्थमा से पीड़ित ऑस्ट्रेलियन लोगों को थंडर स्टॉर्म मौसम की चेतावनी। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। फेडरल विपक्ष ने ये बताने से इनकार किया है कि क्या वो ईंधन उत्पाद शुल्क में कटौती के विस्तार का समर्थन करेगी जो बुधवार की रात समाप्त होने वाली है। चुनाव से पहले गठबंधन द्वारा जीवन यापन की अस्थायी लागत पेश की गई थी, लेकिन लेबर ने पुष्टि की है कि इसे गुरुवार से नहीं बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल की कीमत 25 सेंट प्रति लीटर बढ़ जाएगी। एबीसी के डेविड स्पियर्स द्वारा पूछे जाने पर गठबंधन से वित्त प्रवक्ता जेन ह्यूम ने कहा कि उनकी पार्टी का इस मामले पर कोई नीतिगत रुख नहीं है।
So on this, on fuel, should it come to an end?
Well, that was our policy.
But now?
And it is our policy. It was our policy. Well, we don't have policies. We're in opposition. We're not in government.
Well, you do. You have a policy on the age pension. What about fuel?
It's not a policy that we can implement, even if we had a different position.
और फेडरल असिस्टेंट ट्रेजरर स्टीफन जॉन्स की प्रक्रिया रही।
लेबर कांट कीप गोइंग अराउंड डूइंग व्हाट द फॉर्मर गवर्नमेंट डिड एंड दैट इज राइट बिलियन डॉलर चेक्स टू सॉल्व एवरी पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इफ द कोअलिशन हैजंट गॉट एनी पॉलिसीज ऑफ इट्स ओन, दे शुड गेट आउट ऑफ द वे ऑफ द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटिंग इट्स पॉलिसीज।
राजनेता इस सप्ताह एक बैठक के लिए कैनबरा लौट रहे हैं। अस्थमा से पीड़ित ऑस्ट्रेलियन लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि वे अस्थमा के चरम मौसम के लिए तैयार रहें जो निकट आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लालीना मौसम की घटना साल के इस समय में एलर्जी पीड़ितों को अधिक जोखिम में डालती है। थंडर स्टॉर्म अस्थमा का चरम मौसम लगभग अक्टूबर की शुरुआत से दिसंबर के अंत तक होता है। नेशनल अस्थमा काउंसिल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में दुनिया में सबसे अधिक अस्थमा की दर है, जिसमें 10 में से एक व्यक्ति प्रभावित होता है। राष्ट्रीय अस्थमा परिषद के निदेशक और श्वसन चिकित्सक प्रोफेसर पीटर वॉक का कहना है कि यह महत्वपूर्ण है कि अस्थमा के रोगियों को पता हो कि उस आपात स्थिति में क्या करना चाहिए।
The best protection that you have against either thunderstorm asthma or spring and summer when these allergies are more prominent is to have good day-to-day control of your asthma in the first place. And for pretty much everyone with asthma over the age of 6, if they're needing to use a reliever more than a couple of times a month, they should be on a regular inhaled preventer, best really with a low-dose inhaled corticosteroid. That substantially reduces the risk.
रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने पुष्टि की है कि ऑस्ट्रेलिया की रक्षा क्षमताओं पर एक अंतरिम रिपोर्ट नवंबर में सरकार को दी जाएगी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के परमाणु पनडुब्बियों के अधिग्रहण की समय रेखा पर अधिक विवरण भी दिया। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का अनुसरण करता है कि व्हाइट हाउस संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला निर्माण करके 2030 के दशक के मध्य तक पनडुब्बियों की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए बातचीत कर रहा है। श्री माल्स ने रविवार को स्काई न्यूज के एक इंटरव्यू में इस मामले पर कहा।
What we've sought from the process that's underway with AUKUS right now is not simply to answer the question as to what platform we run with, although that's clearly critical, but how soon we can get it, noting that really the situation we inherited from the former government was a successor submarine at some point in the 2040s. Were that to be the case, there definitely would be a capability gap.
फेडरल मंत्री लिंडा बर्नी ने संविधान में संसद में एक वॉयस को शामिल करने पर जोर दिया है, जिसका देशभर के स्वदेशी लोगों के जीवन पर एक ठोस प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो कहती हैं कि फेडरल संसद के सामने हर कानून पर आवाज नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने द्विस्तरीय प्रणाली के बारे में चिंता जताई थी। स्काई न्यूज पर एक इंटरव्यू में सुश्री बर्नी ने जोर देकर कहा कि आवाज दो प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रथम राष्ट्र के लोगों को इस धरती पर सबसे लंबे समय तक की संस्कृति के रूप में मान्यता देना और स्वदेशी लोगों के जीवन में सुधार।
There is not equity in this country. Whatever government's done in the past has not filled those gaps, and this is an opportunity, a nation-building opportunity for us to get things right. The Voice will be an advisory body to the Parliament. Things like land rights legislation, things like native title, cultural water allocations, childcare.
आपातकालीन सेवाओं ने चेतावनी दी है कि एक नई निम्न दबाव वाला सिस्टम सोमवार से यानी 26 सितंबर से पश्चिमी न्यू साउथ वेल्स में आने का अनुमान है, जो मंगलवार और बुधवार को पूर्व की ओर बढ़ेगा और उन स्थितियों में तेज बारिश और कई इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना उत्पन्न होगी। वर्तमान बाढ़ को देखते हुए जलग्रहण क्षेत्र बांधों मार्ग बहुत ही संवेदनशील स्थिति में हैं और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में नए सिरे से बाढ़ आने की संभावना है। राज्य के उत्तर में वॉरेन और वीवोर्स सड़क मार्ग से कटे हुए हैं और अलग थलग हैं और इसके कई दिनों तक ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। निवासियों को पानी, दवा, भोजन और अन्य आपूर्ति पहुंचाने के लिए आपातकालीन सेवाएं विमान का उपयोग कर रही हैं। न्यू साउथ वेल्स स्टेट इमरजेंसी सर्विस के एंड्रयू एडमंड्स ने स्कूल की छुट्टियों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में सड़क यात्राओं पर विचार करने वालों के लिए एक चेतावनी जारी की है।
As it is, coming into the New South Wales school holidays, we're urging everyone who is travelling to check livetraffic.com before heading out and to be vigilant for changing conditions. Never drive through floodwaters and know your evacuation route and have a plan. For the latest warnings, please visit ses.nsw.gov.au or the bomb.gov.au.
भारत के उत्तराखंड में रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 साल की युवती के मौत के मामले में पुलिस ने बीजेपी के निष्कासित नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या और उसके दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हत्या के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया है। युवती का शव कल शनिवार को चीला नहर से बरामद किया गया था। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलकित अपने साथियों के साथ युवती को ले गया और उसे धक्का देकर नहर में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिख रहे हैं। बताया गया कि आरोपियों ने जुर्म कबूल किया है। उन्होंने बताया कि जांच पूछताछ और फोन चैट में ये बात स्पष्ट हो गई है कि युवती पर गलत काम के लिए दबाव बनाया जा रहा था जिसके लिए वो मना कर रही थी। हत्या के तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, रिसॉर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का डॉलर अमेरिका के 65 सेंट और भारत के 53.33 रूपये के बराबर है। खेल समाचारों में भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली गई तीन T20 मैचों की सीरीज के तीनों मैच जीतकर भारत ने 3-0 से सीरीज जीत ली। लंदन के लॉर्ड्स में खेला गया ये मैच भारत की महान महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के करियर का आखिरी मैच भी रहा। इस फेयरवेल वाले मैच में झूलन ने 10 ओवर की गेंदबाजी की और इस दौरान 3 मेडन सहित 30 रन देकर 2 विकेट लिए। टॉस के समय टीम की कप्तान हरमनप्रीत सीनियर प्लेयर झूलन को अपने साथ ले गई थी और वहां भावुक हो गई। वहीं जब झूलन मैदान पर बैटिंग करने आई तो इंग्लैंड की टीम की सभी खिलाड़ियों ने एक कतार में खड़े होकर झूलन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी सोमवार को पर्थ में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8 डिग्री। एडिलेड में बौछारें, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। मेलबर्न में बौछारें, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। होबार्ट में बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री। कैनबरा में बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 3 डिग्री। सिडनी में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। डार्विन में भी धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।